Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
नमस्कार मार्केट मंत्र के ताजांक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य. भट्टाचार्य जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंक.
थैंक यू मनोज. यस, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फ्रेंड्स. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस सर्ज ऑलमोस्ट 4%. सेंसेक्स रैलीज ओवर 2900 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट नियरली 24,000. RBI's Monetary Policy Committee keeps repo rate unchanged at 5.25%, and global crude oil prices register a steep decline of over 15%.
घरेलू शेयर बाजार में आज हुई जोरदार खरीदारी. प्रमुख सूचकांक लगभग 4% ऊपर आए. सेंसेक्स 2,900 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,000 के आसपास बंद हुआ. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को बिना किसी परिवर्तन के 5.25% पर बनाए रखने की घोषणा की. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में हुई भारी गिरावट. 15% से अधिक नीचे आए ब्रेंट कच्चे तेल के दाम.
Well, before we move on, here's a disclaimer for our listener friends. Friends, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और अब सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार. आज जहां जोरदार खरीदारी की गई, प्रमुख सूचकांक लगभग 4% बढ़त के साथ बंद हुए. अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के संघर्ष विराम समझौते ने बाजार में जबरदस्त तेजी लाई. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट हुई. युद्ध आगे बढ़ने की आशंका थम जाने से निवेशकों का हौसला काफी तेज था. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2,946 अंक की शानदार बढ़त लेकर 77,563 पर कारोबार के अंत में बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी खरीदारी लगातार जारी रही और निफ्टी 874 अंक बढ़त के साथ 23,997 दर्ज हुआ. छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की खरीदारी भी अच्छी खासी की गई. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 4% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 4.4% तेजी के साथ बंद हुआ. मई 2025 के बाद एक दिवसीय कारोबार में प्रमुख सूचकांकों की ये सबसे तेज बढ़त दर्ज हुई है.
Benchmark domestic equity indices surged nearly 4% today as oil prices declined following the announcement of a 2-week ceasefire agreement between Washington and Tehran. The Sensex skyrocketed 2,946 points to close at 77,563, while Nifty jumped 874 points to settle at 23,997. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 soared over 4%, small-cap 100 closed 4.4% higher. Earlier, the markets opened sharply higher with a gap up of over 3% following the temporary ceasefire announcement. Indices held on to gains throughout the session, buoyed by broad-based buying, and closed in the green for the 5th consecutive day. This marked the highest single-day gain for both indices since May 2025.
Sensex pack पर ध्यान दें तो 30 में से 27 कंपनियों के शेयर आज लाभ में रहे. लगभग 8.2% बढ़त के साथ इंडिगो के शेयर सबसे अधिक मुनाफे के साथ बंद हुए. लार्सन एंड टुब्रो को 7.6% से अधिक का फायदा हुआ. बजाज फाइनेंस के शेयर 7% के आसपास ऊपर उठकर बंद हुए. घाटा उठाने वाली कंपनियों में सबसे आगे रही टेक महिंद्रा, जिसे 1.5% से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. सन फार्मा के शेयर 0.3% नीचे आ गए. पावर ग्रिड को 0.2% का घाटा हुआ.
Among the sectoral indices at the BSE, all sectors ended in the positive territory. Among the top gainers, realty soared nearly 6.8%, auto climbed over 6.5%, and mid-small private bank jumped more than 5.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 3,859 companies advanced, 537 declined, and 101 remained unchanged.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 40 पैसे मजबूत होकर 92.58 रुपए पर बंद हुआ. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार चौथे सत्र में आज रुपए में मजबूती देखने को मिली है. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 98.76 पर कारोबार कर रहा था.
सो मिस्टर भट्टाचार्य, व्हेन वी टॉक ऑफ ऑप्टिमिज्म, पीपल से बी पॉजिटिव, एंड सो व्हेन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप इज पॉजिटिव, इट्स नॉट गुड. बीइंग पॉजिटिव इज नॉट जस्ट गुड फॉर ह्यूमन साइकोलॉजी बट फॉर गुड फॉर मार्केट्स एज वेल.
वेल, दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट व्हाट हैज रियली हैपेंड इन द मार्केट्स टुडे इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. नंबर वन, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, that the US president and Iran have agreed to a kind of a temporary ceasefire. It remains to be seen how durable that ceasefire is. Mm-hmm. But the markets perceived it as positive development. What really happened was, even before the markets in India opened, the crude oil prices fell by 15%. And when the markets opened, they were responding to not just what really happened on the war front, but also on the 15% drop in the crude oil prices. And then supplementing that came the Reserve Bank of India's monetary policy statement review, which suggested that things are a little stressful, but India seems to be holding... seems to be in control of the situation. So the general message for the Indian economy from the Reserve Bank of India is that yes, there is guarded confidence was there earlier, and now there is little bit of heightened vigilance. Mm-hmm. But the broad message was that growth is still will be at 6.9% for next year. Inflation would be elevated, going up from 2.1% to almost 4.6%. But nevertheless, the markets took it as a positive thing and recovered, increased by 4%. So that, in brief, is what really happened to the market. Some sectors did not do very well. The tech sector did not do well. But the realty companies, they did very well. They saw the sharpest rise, because obvious reason, if the war situation becomes normal, there is a clause that is going to be discussed between US and Iran. Hmm. Is a reparation. Now, what is reparation? Reparation is reconstruction of those establishments and buildings and projects which have been destroyed in war. So for reconstruction means suddenly the real estate companies in India will actually get more projects in hand. So there is that sense that if the war comes to an halt, oil prices will come down. And if oil prices come down, then India's public finances will be in better shape. Inflation will also come under control. So on the whole, this is the basis on which the stock markets behaved, went up. By almost 4%.
Right.
यहाँ पर यदि हम अपने श्रोता और छोटे निवेशक के हितों को ध्यान में रखकर आगे चर्चा को बढ़ाएं, तो समझना चाहेंगे कि उनके लिए जो ये ताजा संघर्ष विराम है, वह क्या संदेश दे रहा, और जो अभी यानी आज की कह लें अच्छी खासी रैली बाजार में देखने को मिली है, उससे क्या संदेश लेना चाहिए और उनका व्यवहार क्या रहना चाहिए बाजार के प्रति?
पहली बात तो यह है कि जो स्टॉक मार्केट में जो निवेशक ऑलरेडी जो है, उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वक्त और भी निवेश करने का समय आ गया है
जी.
ये समय ऐसा है जो कि आप जो निवेशक जो हैं वो अपनी निवेशों में जुटे रहे. अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत लॉस में जाना पड़ेगा, पर अगर आप एंटर कर रहे हैं, पर अगर आपकी दृष्टिकोण अगर लॉन्ग टर्म है, दूरकालीन अगर दृष्टिकोण है आप, तो फिर आप इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर 10 दिन का जो युद्ध विराम जो हुआ है वो अगर मान लीजिए एक रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ता है, तो स्टॉक मार्केट की जो दिशा वो पॉजिटिव ऊपर जाएगी और जो लॉसेस पिछले 40 दिनों में हुए थे उसको रिकवर करने की पूरी एक इंडिकेशन है। पर जैसे मैंने पहले कहा कि स्टॉक मार्केट जो है जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए आपको जोखिम उठाना जरूरी है। और आगे किस तरह स्टॉक मार्केट जाती है उसको देखने के लिए हमें समय को भी रखना पड़ेगा।
यहां पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे रुपए की ओर। लगातार 4 दिनों से हम रुपए में तेजी देख रहे हैं। रुपए का ये स्तर और जो मौद्रिक नीति समिति की जो ताजा ऐलान है, यह क्या दर्शा रहा और रुपया किस दिशा में जाता यहां से आगे दिख रहा आपको?
देखिए, आज की जो रुपए की जो 40 पैसे की जो बढ़ोतरी जो हुई है, जो गेन जो हुआ है, उसका प्रधान कारण ये है कि जो हमारी जो तेल की जो हमारी जो आयात होती है उसका दाम अगर करीबन अगर $112 पर बैरल ब्रेंट क्रूड का था, वो अब आकर नीचे 90-95 में आ गया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी असेसमेंट ये है कि अगर तेल का दाम अगर $85 में आ जाए तो शायद जो एक स्टेबिलिटी जिसे कहेंगे वो हम हासिल कर सकते हैं
जी।
तो मैं ये समझता हूं कि जो रुपये का जो स्ट्रेंथनिंग जो हुआ है 40 पैसे का, वो वही कारण है कि आयात में जो डॉलर का खर्चा जो होगा वो कम होगा, तो उससे जो डिमांड सप्लाई की जो एक जो गैप रहती है उसको एड्रेस करता है। इसीलिए रुपए में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथनिंग आज हमने देखा है।
Yeah. Well, you've mentioned the Reserve Bank of India a couple of times here. We have a story. The Reserve Bank of India has kept its policy rate unchanged at 5.25%, announcing the first bi-monthly monetary policy for the current fiscal. RBI Governor Sanjay Malhotra today said that the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain the repo rate unchanged with a neutral stance. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 5% and the marginal standing facility rate and the bank rate remains at 5.50%. Monetary Policy Committee has also expected that GDP for last financial year will be at 7.6%, while for current fiscal, it will be at 6.9%. RBI has projected that CPI inflation for the current financial year will be at 4.6%. Mr. Malhotra said persistently elevated energy prices due to the West Asia conflict and possible El Nino conditions pose upside risks to inflation. Let's hear what the RBI governor said in his speech regarding the current situation.
The MPC noted that since the last policy meeting, geopolitical uncertainties have heightened significantly. Headline inflation remains contained and below the target. However, upside risks to the inflation outlook driven by increased energy prices, pressures and probable weather disturbances affecting food prices have increased. Core inflation pressures remain muted, although supply chain dislocations and the risk of second round effect render the future inflation trajectory uncertain. The MPC further noted that high frequency indicators till February of this year suggest the continuation of strong momentum in economic activity. Growth impulses continue to be supported by robust private consumption and investment demand. However, the West Asia conflict is likely to impede this growth. Higher input costs associated with increase in energy prices and international freight and insurance costs, along with supply chain disruptions that could constrain availability of key inputs for downstream sectors, would impair growth. The government has taken several measures targeted at supporting export and protecting supply chains. This should mitigate the adverse impact of the conflict. The MPC opined that the intensity and the duration of the conflict, as well as the resultant damage to the energy and other infrastructure, add risk to the inflation and growth outlook. However, the fundamentals of the Indian economy are on a stronger footing, providing it with greater resilience to withstand shocks now than in the past.
यहाँ पर हम प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला किन कारकों को ध्यान में रख के लिया? गवर्नर साहब ने कई सारे कारण बताए हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे कि वर्तमान हालात में ब्याज दर को बनाए रखना क्या दर्शाता है।
देखिए, आपको ये देखना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की स्टैंस क्या है। स्टैंस अभी भी न्यूट्रल है
जी।
इसका मतलब यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य जो 6 लोगों की जो सदस्य जो हैं, उनका यह मानना है कि इस वक्त ऐसी अवस्था में इकोनॉमी गुजर रही है कि हालांकि इकोनॉमी की भी स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है, पर तब भी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसमें जो ग्रोथ का, जैसे कहते हैं कि ग्रोथ का जो रिस्क वो डाउनसाइड है और इन्फ्लेशन का रिस्क अपसाइड है। इसका मतलब इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ सकता है और ग्रोथ शायद नीचे आ सकता है। और उसी के अनुसार अगर आप देखें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एस्टिमेट, जो फोरकास्ट जो किया गया है, वो 7.6% की वृद्धि दर 2025-26 में जो हुई थी उससे थोड़ी नीचे आकर 6.9% में आ जाएगी। और उसी तरह जो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 2.1% की 2025-26 में थी, वो बढ़कर 4.6% आ जाएगी और तीसरे तिमाही में वो बढ़कर करीबन 5 के ऊपर जाएगी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो ये काफी एक कॉशियस अप्रोच रहा है, मैं समझता हूं। और हालांकि वो इंडियन इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ जो है उसको रिकग्नाइज कर रही है, पर उसके साथ साथ ये भी वो ऐलान कर रही है कि जो जो हालात जो हैं वो काफी कठिनाई में से गुजर सकते हैं और ये जो समस्याएं आ सकती हैं या चुनौतियां आ सकती हैं वो सिर्फ 1 महीने में 2 महीने में नहीं जाएगी पर लंबा चल सकता है।
It's always a tightrope walk for the government to balance growth and inflation, more so now because it's a very uncertain months ahead. Although we are very comfortable, there's no panic happening. The government is doing a lot of damage control and taking care of the people. But still, it's a tough.
It is a tightrope walk. As you would know that the banking system is a very central to the running of the Indian economy. The experts also believe that that probably the time for a change in the repo rate has not yet come. So this is, as you pointed out, this is the first monetary policy review of the current financial year. And when the time comes for the second policy review, which is June, if the situation more or less remains unchanged, and even if the war comes to an end, my sense is, given the inflation projection, the Monetary Policy Committee may not take a position by which either the rate comes down or goes up. So what it means is that there will be the repo rate will continue to remain at this current level for the next few months, and it will be a reflection of the cautious approach that the RBI and its Monetary Policy Committee has taken towards financial sector management.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में भी आज जोरदार तेजी देखने को मिले। पश्चिम एशिया में दो सप्ताह के लिए संघर्ष विराम की खबरों से निवेशकों ने खूब खरीदारी की। दक्षिण कोरिया का कोस्पी निवेशकों के समर्थन से लगभग 6.9% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 5.4% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.7% ऊपर आ गया। हांगकांग के हेंगसेंग में 2.6% की तेजी देखने को मिली। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.8% के आसपास लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो प्रमुख यूरोपीय बाजारों में भी समाचार तैयार किए जाने तक अच्छी खासी खरीदारी चल रही थी, जर्मनी का डेक्स 5.2% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। लंदन के फुटसी 100 में 2.9% से अधिक की तेजी चल रही थी, जबकि फ्रांस का कैक 40 भी 4.6% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था।
A look at the US markets now. Wall Street ended on a mixed note yesterday. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index gained 0.1% and the S&P 500 added almost 0.1%, while the Dow Jones Industrial Average dipped nearly 0.2%. Mr. Bhattacharya, US started it all. How is it affected by this whole geopolitical situation? How is inflation there? How is unemployment there?
Well, the inflation is rising there. Hmm. Because the oil prices have gone up, and it will be interesting to see when the next review takes place with the Fed, that what stance they take. Unemployment situation is not alarming, but it is causing some concern. There are a lot of job losses already being reported. Major tech companies are going in for job cuts.
Yes.
The situation is tight there. One has to see that to what extent the impact of this war gets transmitted to the US economy. It will be a difficult time for them to manage going forward.
So it can't brush off and say, not in my backyard.
It
will be touched.
Absolutely.
Yeah. आइए लौटते हैं स्वदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ मौसम 2026 के लिए फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर 41,534 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से किसानों को रियायती, किफायती और उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि यह सब्सिडी खरीफ मौसम 2026 में दी गई सब्सिडी से 4,317 करोड़ रुपए से अधिक है। उर्वरकों के दाम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहे ताजा रुझानों को देखते हुए सरकार ने इस वर्ष खरीफ 2026 सत्र के लिए इस रियायती दर की मंजूरी दी है। फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों के मूल्य में ये रियायती दर इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच प्रभावी रहेगी। किस रूप में किसानों को सहायता मिल पाएगी सरकार के इस फैसले से?
देखिए, जो उर्वरक जो हैं, ये सारे उर्वरक गैस से बनती हैं
जी।
जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा उर्वरक यूरिया का इस्तेमाल होता है, और यूरिया में देखेंगे तो जो गैस का जो कॉस्ट होता है एक यूनिट यूरिया को बनाने में, करीबन 85% कॉस्ट होता है गैस का
जी।
तो गैस के दाम बढ़ गए हैं
जी, जी।
तो साफ है कि जो उर्वरक की दाम भी बढ़ जाएंगी, पर जो किसान जो है वो तो उर्वरक का इस्तेमाल
करेंगे
और उससे करने से उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो मार्जिन है, उसमें हानि पहुंचेगी। उससे सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी
जी,
और
जी।
वही सरकार ने किया है कि उन्होंने सब्सिडी की जो मात्रा जो है वो बढ़ा दी है। जैसे आपने कहा कि 4000 करोड़ ज्यादा सब्सिडी इसी पिछले साल से ज्यादा ऐलान किया गया है, वैसे ही इस साल की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो एलोकेशन बजट में किया गया था वो जरा कम था, करीबन 8% कम था, और उस समय युद्ध नहीं छिड़ा था। तो लगता है कि सरकार अब उसको देखते हुए जो अधिक जो चीजें जरूरी थी फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, उसी के ऐलान डिसीजन लिया गया है आज
जी।
All right, government today asserted that a sufficient stock of coal is available at mines and power plants across the country. Addressing the inter-ministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi, Joint Secretary at Coal Ministry, Sanjeev Kumar Kassi, said that there has been no rise in the price of coal and adequate stock of coal has been maintained in the wake of West Asia conflict. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that LPG, petrol and diesel are available in sufficient quantities across the country and normal supply is continuing.
और अब कच्चे तेल के दाम।
जी, global crude oil prices registered a steep decline today following a ceasefire between the United States and Iran, which includes a commitment to restore navigation through the Strait of Hormuz. Brent crude was trading almost 15.1% down at $92.79 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading over 17% lower at $93 and 70 cents per barrel when reports last came in. I always joke and say the buck stops at oil. What would you, how would you comment on this?
You are very right. Mm-hmm. I think the Brent crude oil price is an indicator that how India's public finances will be greatly relieved. As you would know that the government recently slashed the special additional excise duty on petrol and diesel,
yes,
which were meant essentially to keep the prices unchanged and at the same time give some relief to the oil refining and marketing companies who were under margin pressure. So today's decision and news that the Brent crude oil price has come down will reflect in the Indian basket crude oil price, which had gone up to $127 per barrel on 7th of April, to come down substantially. And it will mean a big relief for the Indian economy, Indian oil companies, because we are very much dependent on crude oil. In terms of imports, almost 89 to 90% of our total imports take place to meet our domestic requirement. So as we just now, we are discussing the fertilizer subsidies have been increased a little bit. Because once again, because the oil, the gas prices have gone up, so which has increased the prices of fertilizer. Similarly with the crude oil. So the crude oil price coming down is good news, not just globally, but also for the Indian economy.
यहाँ पर एक भी यदि हम ये समझना चाहें कि दो सप्ताह का जो ये ताज़ा युद्ध विराम हुआ है, संघर्ष विराम हुआ है, उसमें तेल के दाम किस रूप में प्रभावित होने के आसार हैं? आज भारी कमी हमें देखने को मिली है, और यह जो इंडियन बास्केट ऑफ ऑयल है उसको किस रूप में प्रभावित करेगा?
देखिए, जो युद्ध के पहले अगर ब्रेंट को देखें आप, वो 65 के करीबन था, $65 एक बैरल का
जी.
उस समय जो हमारी जो इंडियन बास्केट क्रूड प्राइस थी वो करीबन 69-70 के करीब थी, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत ब्रेंट आता है, थोड़ा बहुत वेस्ट एशियन क्रूड आता है. तो और यही इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल अब 127 पे पहुंच गया है.
जी जी जी.
ब्रेंट पहुंच गया था 112, 113, 115 में. तो मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध विराम की स्थिति अगर चली और कुछ रेजोल्यूशन हुआ हॉर्मुज़ में, जो बात चल रही है हॉर्मुज़ को फ्री करने की, वो थोड़ा भी उसमें नॉर्मल स्थिति आ गई, तो मैं समझता हूं कि ये तेलों के दाम नीचे आएंगे और हमारे लिए
बढ़िया
के लिए बढ़िया खबर होगा.
All right, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading nearly 1.9% up at 1,53,430 rupees per 10 grams, while silver was trading 6.5% higher at 2,46,680 rupees per kilogram a short while ago.
आइए चलते हैं MCX, जहां जून अनुबंध वाले सोने का मूल्य इस समाचार तैयार किए जाने तक लगभग 2% बढ़त के साथ 1,53,360 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं मई में आपूर्ति वाली चांदी 6.2% बढ़त के साथ 2,45,758 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. बहुत संक्षिप्त सी प्रतिक्रिया, ताजा स्थिति में सोना ऊपर या नीचे कहां जाता दिख रहा? बहुत
मुझे लग रहा है कि अगर स्थिति अगर नॉर्मलाइज होती है तो ये ऊपर जाएगी.
बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से भट्टाचार्य जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना.
नमस्कार, धन्यवाद.
Thank you. And let's have the headlines once again. Benchmark domestic indices surge almost 4%. Sensex rallies over 2,900 points. Nifty settles at nearly 24,000. RBI's Monetary Policy Committee keeps repo rate unchanged at 5.25%. And global crude oil prices register steep decline of over 15%. With that, we come to the end of this edition of Market Mantra. So from all of us here, Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.